نصیب ہو انسان کو جو کہ ایک برحق ہے, لازم ہے. نلایا جائے, کفن پہنایا جائے, خوشبو لگائی جائے, نماز جنازہ کی جائے, پورا مجموعہ سانس جائے, قبر میں اتارا جائے, قبر کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, سوالات آسان ہوں, جنت کی کیاری بن جائے, دلہن کی مان انسان کو سلا دیا جائے, سور پھونکا جائے, قبر سے نکلے کوئی وحشت نہ ہو, بہت ہی آرام کے ساتھ حشر کے سارے منازل کو طے کرتا جائے, پل صراط سے گزرتا جائے, جہنم سے بچ جائے اور چلتا چلتا جنت میں داخل ہو جائے, جنت میں داخل ہو کے اپنے محل میں پہنچ جائے اور محل میں جا کے سکون اختیار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے قرآن کے اندر, ذالک فوز العظیم, بھائی جو بندہ بھی اس دنیا کے ساتھ اس غیر مستقل عارضی دنیا میں رہ کر اس طریقے سے ساتھ سفر اختیار کر لیتا ہے, ساری منازلوں کو طے کر دیتا ہے, اس کی قرآن شاہد ہے, اللہ گواہ ہے کہ یہ شخص جو ہے سب سے بڑا کامیابی پانے والا انسان ہے. مجھے اور آپ کو جسم دیا, آنکھ دی, شعور دیا, عقل دی, روٹی دی, پانی دیا, بچے دیے, بیوی دیے, تنگی دی, آرائش دی, مصیبت دی, بیماری دی, اس دنیا میں جس طرح بھی اللہ پاک نے رکھا, لیکن جو اس طرح چلا گیا ان تمام چیزوں کو برداشت کرتا ہوا گزر گیا, تو پھر وہ جو پلٹ کے دیکھے گا اپنے جنت میں جانے کے بعد تو یہ اس کے خواب نظر آئے گا, اس کو یہ حقیقت نظر نہیں آئے گی, وہ ایک خواب بن جائے گا, بلکہ ہنسے گا یہ کیا وقت, پلک چھپکتے لگے گا جیسے یہ وقت انسان کا گزر گیا. آج کو انسان کو مصیبت ہو جائے تو رات گزارنا مشکل ہو جاتی ہے, ذرا پریشانی آ جائے تو دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کا, لیکن یہ سب اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے انسان کا, ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے بالکل. ہمیں یہ جو بات اللہ نے بتائی ہے کہ ہر منازل جو آنے والی ہیں حق ہیں, آئیں گی, ہر ڈیفینیٹلی آئیں گی ساری چیزیں, اسی ایمان کے بعد تو ہم ایماندار ہوئے ہیں, اس ماننے کے بعد تو ہم ایماندار ہوئے ہیں, یہی تو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پلانا, اس پہ تو شک کرنا, کمزور ہونا, اتنے ایمان کی کمزور ہونے کی دلیل ہے انسان کے لیے. ایمان مضبوط ہوگا ہر وقت اس کے لیے انسان تیار رہے, तो मुझे बताएं इस कामयाबी हासिल करने के रिश्ते को जाने के लिए क्या करना चाहिए हमें। बिग जॉब है हमें दिया अल्लाह ने, इसके लिए तो बहुत अमर चाहिए, बहुत बड़े बड़ी बड़ी तहजुदें चाहिए, श्याम और क्याम चाहिए, पक्की जिंदगी चाहिए, मुत्तकी होना चाहिए, मुजाहिद होना चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए इंसान को। मुजाहिद किसको कहते हैं? अल्लाह के रास्ते में कोशिश करना कि हम जन्नत में पहुंच जाएं, इसका नाम मुजाहिद है। कोई और मकसद नहीं है इसका कि अल्लाह के रास्ते में हम कोशिश करते हुए कहां पहुंच जाएं? जन्नत में पहुंच जाए। मुजाहिदा, मुजाहिदा करने वालों क्या कहते हैं? मुजाहिद, इस चीज का मुजाहिदा आदमी कर रहा है। और गलत माने में नहीं है लफ्ज। तो ये तो एक किस्म की चीज है हमारे सामने। तो बताएं कितने बड़े अमल चाहेंगे। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत देखिए, इस उम्मत पे अल्लाह का फजल देखिए कि कोई इतने बड़े सफर के लिए जहां नारा पड़ेगा कि ये कामयाब हो गया इंसान और जन्नत में हम बैठ जाएं, इस सारे मनाजिल को तय करने के लिए जैसे मैंने बताया इतनी आसानी से हो जाए, मौत भी, कब्र भी, हश्र भी, कितने बड़े बड़े इम्तहान है, गुजरता हो निकल जाए, कैसी जिंदगी चाहिए? अल्लाह ताला कहता है कितना आसान किया है, कितना आसान किया है, आप इस मत पे आप देखें। अल्लाह कि हजारों हजारों रास्ते खोल दिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए इसको हासिल करने के लिए, एक नहीं है, हजारों रास्ते खोल दिए हैं। उन हजारों रास्तों पर अल्लाह ताला ने उसको मुख्तसर किया है। आप गौर करें क्या कि सिर्फ कोई इंसान भी ईमान वाला, सुने आप तो अपनी कमजोरी देखें, ईमान वाला मर्द और औरत में कोई इंसान भी, अल्लाह ताला कहता है कोई इंसान भी सिर्फ और सिर्फ एक नेकी ऐसी ले आए जो मुझे पसंद है, मैं उसे कामयाब करूं। बोले सुभान बताओ कहां कहां मैं तजद करूं, कहां कहां है कि मैं नमाजें देखूंगा, कहां कहां है तुम्हारी ये चीज देखूंगा, कहां कहां है मैं फला देखूं, नहीं कर। एक नेकी लिया अल्लाह ताला कहता है, एक नेकी पर मुझे पसंद होते ही वो नेकी, सुभान अल्लाह मुझे पसंद हो, बस दरवाजे खुले ताले के फौजद अजीम। हम एक नेकी भी नहीं कर सकते, हम सोचें एक नेकी भी ऐसी नहीं कमा सकते कि हम कहें कि अल्लाह इस नेकी से हमारी राजी हो गया। नेकी भी ये नहीं कि भाई कोई फर्ज वाजिब इस पर अल्लाह ने उस पर वो रखा है, कैद रखी, नहीं नहीं नहीं, नेकियों के लिए भी ये अंदाज लाए जितने हमारे सांस नहीं है, इतनी नेकी अल्लाह पाक ने रास्ते खोले हमारे लिए, इतने रास्ते खोले हैं नेकियों के कमी के तो है ही नहीं सब। उसमें से भी एक नेकी चाहिए अल्लाह पाक को बख्शने के लिए कि आदमी जा रहा है बड़ा परेशान है मुसीबत में, अल्लाह से बुलाएंगे यहाँ भाई आ गया जी, कुछ भी नहीं है मेरे पास, वाकई कुछ भी नहीं होगा किसी के पास, हिसाब के पढ़ने में गए तो मारे गए, काम खत्म। तो वहां अल्लाह ताला कहेगा इसके निकालो कोई काम देखता हूं उसमें क्या। सुभान अल्लाह, एक चमकती हुई नेकी निकला, ये तो मुझे पसंद थी, ये तो मुझे बहुत महबूब थी, इसने काम किया था, जहां जन्नत में चला जाए। ये सबक क्या दे रहा है हमें, मुझे बताया कि भाई अगर हम बड़े बड़े कुछ नहीं कर सकते लेकिन जिंदगी ऐसे गुजारे मोमिन कि हर काम जो मौका मिल जाए उसको नेकी करने का उसको ऐसा बना दे कि इससे मेरी बख्शिश हो जाए, किस बाईपास करे ना किसी चीज को, जब उसने शर्त ही लगा दी कि तू मुझे राजी कर दे, मैं राजी हो जाऊं तेरे एक फेल से, एक नेकी से जन्नत खुल गई तेरे लिए, नेकी कैसी अल्लाह हो, कितनी बड़ी नेकी चाहिए, कितना बड़ा अमल चाहिए उसके लिए, आप सोचे चल रहे हैं आप रास्ते में जा रहे हैं, दिल ने आया देखा आपने कोई चीज डला पड़ा है, कोई किसी भी इंसान के लिए, इंसान के लिए मोमिन किसी इंसान को तकलीफ देगा, कोई आपको नहीं देख रहा, कोई मौजूद नहीं है, उस इंसानियत का आपने ख्याल किया कि इस इंसान की ठोकर लग जाए, चुपके से आपने उठा के उस डले को एक तरफ रख दिया, ऐलान होता है आसमान से, اسی وقت اعلان ہوگا کہ 10,000 نیکیاں اس کی لکھ دی جائیں. یہ فضائل کی حدیث سنا رہا ہوں. کتنی؟ 10,000 نیکیاں لکھ دی جائیں, اور اس میں 10,000 نیکیوں کی اتنی قیمت ہوگی, اتنی قیمت ہوگی کہ ساری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہوگی جنت میں جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہے اس میں سے ایک نیکی کافی ہے جنت میں جانے کے لیے, باقی جو 9,000 نیکیاں ہوں گی 10,000 سے وہ ساری کے سارے درجات بلند ہوں گے اس کے ساتھ. کیا فیل کیا صرف؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے, بس ان سے پتھر لگا ہے. اللہ اکبر, چل رہے ہیں آپ راستے میں, کوئی شخص آ گیا, آپ نے پوچھا کون ہے, ہندو ایسی کیسائی ہے, کیا ہے تیرا مذہب, کچھ نہیں. بھائی صاحب بات سنو جی, کبھی آپ راستہ بھٹک کے دیکھیں کتنا تکلیف ہوتی ہے آدمی, موٹر وے پہ آپ گھوم جائیں اگر جلدی آپ نے جانا ہے, راستہ بھول گیا, ہوتی نا تکلیف. تو کوئی آدمی آپ کو دیکھ لیتا ہے, رک جاتا ہے, اپنی گاڑی کو روکتا ہے, سائڈ پہ لے جاتا ہے. سر بھی کیوں پریشان ہے, کیا بات ہے, کوئی آپ کو جاننے والا نہیں, آپ کا مذہب سے تعلق نہیں, کسی انسان ہے, آدم کی اولاد ہے, تبھی کیا بات ہے, ہم بہت سخت پریشان ہوں, مجھے راستہ نہیں مل رہا. وہ رک جاتا ہے, اپنی 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 کوشش کو پیچھے کر لیتا ہے, کہتا ہے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, آئے میں آپ کو راستہ چلتا ہوں, میں آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں. اوپر سے لانا ہوتا ہے, اس کے 10,000 گناہوں کو ختم کر دیا جائے. دس لاکھ گناہوں کو ختم کر دو, 10,000,000 اس کی نیکی لکھ دو, اور یہ جنت میں چلا گیا, اور جنت 10,000,000 اس کے درجات کو بلند کر دو. مشکل ہے جنت, یہ جو ہمیں پروگرام اللہ دیے مشکل نظر آتا ہے. دیکھیں آپ, یہ ہے اس امت کے لیے اللہ پاک نے کھولا. کہیں کسی آدمی کی بے عزتی کی جا رہی ہے, نیکیاں دیکھیں کسی کی آن بالکل ہمارے گھر کے ساتھ ہی نیکیوں کی آپ یہ سمندر آپ نظر آئیں گے, چلتے پھرتے قدم قدم پہ نظر آئیں گے. آج کے دور میں تو ہے ہی یہ چاہیے, آج تو ہر انسان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کیا حالات ہیں. آبرو کسی کی بےزتی کی جا رہی ہے, وہ شخص گیا اس نے آبرو کو بچا لیا, اس کے کسی طریقے سے بھی اس کی عزت کو بچایا, اس نے اس کی آبرو کو بچایا. اللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے, اتنی بڑی نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی اس کی, ایک فرشتہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے, اور اس فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ موت سے لے کے تجھے جنت تک اس کو چھوڑ گیا نا, تم اس کے ساتھ رہے گا. اس نے انسان کی آبرو کو بچایا ہے. بتایا دیکھ یتیم ہے, چونکہ آج دنیا تو جیتنے ہوئے ڈھار ڈھیر ہی نہیں, آپ اندازہ لگا رہے ہیں ایسے ایسے معاملات ہیں آج کل, تو آدمی حیران ہو جاتا دیکھ کر. یتیم ہے, ترپے نہیں. اللہ اکبر, آپ نے اس سے نرمی اختیار کی, سر پہ ہاتھ رکھا, اس کی پریشانی کو سنا آپ نے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, قسم کھائی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو ختم کر کے جنت میں سے جانے کی پوری پوری داخلے سے پہلے جتنے بھی عذاب تھے اس کے سب کو سب ختم کروا دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کے سائے کے اندر بیٹھا ہے, اور وہ عجیب حیات کے اندر ہے وہ شخص, اتنا کہ اللہ کے نبی جو تھا موسیٰ علیہ السلام ان کو رشک آنے لگا کہ پوچھا اللہ تعالیٰ یہ کون شخص ہے, اتنا زبردست شخص یہ کون ہے. موسیٰ یہ بڑی اچھی عبادت کرتا تھا, اس کی نیکی مجھے پسند تھی. کیا نیکی پسند تھی اللہ تعالیٰ؟ کہ یہ کسی انسان کے اس وجہ سے اس کو تکلیف ہوگی اس کی چگلی نہیں کرتا تھا. اس کو پتہ لگ گیا کہ اس نے چگلی تو بہت بری چیز ہے نا, آپ کو سارے فساد چگلی سے ہوتے ہیں, اس کی دل لگائی اس کی دل لگائی, عورتوں میں تو خاص عادت ہے نا. تو اس کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, اتنا اونچا مقام دیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے ہمارے لیے اللہ نے راستے کھولے ہیں, ہم چند عبادتوں کو سوچ کے بیٹھ جائیں اپنی جگہ. دیکھیے ان کی قبولیت کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نیکیاں بتا رہا ہے اس میں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتے ہیں. تو یہ فرق یہ ہے دوست, ये नेकियां करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ना, हाँ तो ये उसका एक तरीका है, उसका एक रास्ता है ये नेकी करने का। नमाज पढ़ना चाहते हैं ना, उसका एक रास्ता है, मस्जिद जाना पड़ेगा। रोजे रखना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा जो अल्लाह ने रोजे का बताया। हज करना चाहते हैं तो हज का बताना पड़ेगा। ये जो दरवाजे हैं, हजारों करोड़ों जो रास्ते नेकी को खोले हैं आपने, इसको करने के लिए अल्लाह ने एक रास्ता बताया, उस रास्ते को पकड़ना पड़ेगा, उस रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा। जब इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सारी उसकी नेकियां यही चलती हैं फिर उसकी जिंदगी। ये है बात, एक सोचनी बस, वो क्या है, अल्लाह। ये किसी वजूद से, किसी डायरेक्शन से, यानी खाना काबा के सामने खड़ा होना नहीं पड़ता, उसको मुंह मुस्तफ करना नहीं पड़ता, वजू उसके लिए नहीं करना पड़ता। इसके लिए एक चीज है कि अपने दिल को साफ करना पड़ता है, बस दिल को साफ करना पड़ता है, कल्ब सलीम बनाना पड़ता है। जिसका दिल साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर उससे यही नेकियां, यही इबादत सरजत होती है, यही इबादत उसकी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसकी इन नेकियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है उस दिल की वजह से, तो मुझे बताएं उसकी तहज्जुद का क्या मुकाम होगा, उसकी तलावत का क्या मुकाम होगा, उसके रोजों का क्या मुकाम होगा। और अगर दिल बिगड़ा हुआ है तो ये नेकी मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा था, बल्कि जिन बड़ी बड़ी इबादतों की तरफ वो लगा हुआ है वो भी माइनस हो जाएंगी। ये मैं आपको बता देता हूं, जिन हजों को वो गिनता है, जिन चीजों को अपने बहुत कायम करता है, हकीकत में क्या है, वो भी गायब हो जाएंगी। जब दिल इंसान का बन जाता है, दिल बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुकामात बढ़ जाते हैं उन इबादात के, और ये छोटी छोटी नेकियां हर वक्त होती रहती हैं, उस हर वक्त मशगूल उसका कल्ब जो होता है, रहम में डूब चुका होता है, मखलूब के अंदर जा चुका होता है, उस किसी की हक तलफी नहीं कर सकता, किसी से गुस्सा नहीं कर सकता, किसी से लड़ाई नहीं कर सकता, किसी की गिबत नहीं कर सकता, किसी की चुगली नहीं कर सकता। सारा का सारा मुनहसिर किस पे होता है, दिल बन जाए इंसान के पास। दिल पे मेहनत चाहिए दोस्तों, उन इबादत को कबूल करने के लिए, इन नेकियों को हासिल करने के लिए। वल्लाह जो अल्लाह वाले इनकी जो दिल, इनको जो मुकामात दुनिया में नजर आते हैं लोगों को, मुझे बताएं उसकी वजह क्या है, कि उनके पास इन नेकियों का ढेर होता है, ढेर। मेरे हजरत, सख्त सर्दी पड़ी जनवरी की, हमारे शहर में पड़ती सख्त, मुल्तान, मुल्तान जानते हैं सख्त गर्म तीन इलाके, मुल्तान बहुत सख्त गर्म है, ठंड बड़ी सख्त पड़ती है। फिर तुम्हारा तो आगे था थोड़ा, रियाजे खाने चेहरा है, पलों की सर्दी थी, हजरत के पास कंबल था। ये मैं आपको वो वाक़ बता रहा हूँ, बिल्कुल कुछ शख्स जवान गया था मिलने के लिए खानकाह में, तो दरवाजा बंद था, वो जाने से तो कोने में बैठ के बेचारा रात का जागा था, उसको वहीं नींद आ गई। हजरत वहीं रुके, अपना कंबल उतारा, ये नहीं कहा उठ नमाज पढ़, तहज्जुद पढ़, कुछ नहीं कहा, अल्लाह, कंबल वहीं उतारा, ज़ईफ इंसान सख्त सर्दी में, उतारने के बाद उसको पहनाया, सीधा किया, पूरा कंबल उस पर डाल दिया, सुबह तक एक कमीज में वो शख्स बैठा रहा, अल्लाह वाला। और सुबह होने के बाद भी मांगा नहीं उसे कंबल, कि तू मुझे कंबल दे, मुझे सर्दी लग रही। क्या वजह थी, कि दिल बने थे उनके, उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत किस पर की थी, दिल बनाने पर की थी। हम दिल पे मेहनत नहीं करते दोस्तों, दिल की मेहनत कैसी होती है, हम क्या, हमारा मियार क्या है, किसी अल्लाह वाले के पास पहुंच गए या किसी शेख के पास पहुंच गए, बैत कर लेंगे, बैत हो गए, जिगर दे देने, जिगर दे दिया, कितने करने, हजार दे दो जी, 2000 दे दो, ये हम समझे दिल बन रहा है, इससे नहीं बनता दिल। दिल बनाने के लिए सबसे पहले तो नीयत चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरा मकसद क्या है। नमाज तो मैं पढ़ता हूँ, कुरान भी मैं पढ़ता हूँ, तलावत भी मैं करता हूँ, सीधे में करता हूँ, उम्रे में मैं करता हूँ, इस दिल को कैसे साफ करूँ जिसमें मेरे रहम नहीं आ रहा, जिसमें ये कैफियत नहीं पैदा हो रही, मेरा भाई इतने दिनों से भूखा है, मैं उससे पूछ नहीं रहा, मैं देख ही नहीं रहा उसकी तरफ के भाई इसके क्या हालात हैं, इसकी जिंदगी क्या है, उससे वो आती है उसको समझ नहीं आती। और ऐसा भी है कि खुद ऐसा होता है इंसान कि खुद इस हालात से अल्लाह गुजारता है, जब उसको अच्छी हालत मिलती है तो वो भूल जाता है, फिर उसका सलूक मुख्तलिफ होता है लोगों के साथ, वो अपने हालात बिल्कुल ये कुरान बताता है इसको, मेरे भाई वो ऊंच नीच आती है। और ये जो अल्लाह ताला से हालात पैदा करता है ये तो उसको जगाता है कि जब तेरे साथ ये हालात हो तो तूने जिंदगी अब ऐसी गुजारनी है जैसे अल्लाह ने तुझे सहारा दिया, तू भी ऐसी सहारा देना उसको। तो पुख्ता हो जाता है आदमी जो सही अल्लाह को पाने, वो पुख्ता होता है उन उन परेशानी मुसीबतों में, पक्का होता है कि इंशाल्लाह मेरे साथ यहां मैं किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी में पाऊंगा तो चुन चुन के ऐसे इंसान को लाऊंगा, अपने सीने से लगाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। कितने इंसान मेरे जैसे होंगे वो सोचता है, ले अपनी तकलीफ में सोचता है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे इबादत करनी, मैं परेशान गया हूं, बड़ा सख्त दिल था मैं नमाज से गुजरा, बड़ा सख्त दिल था, मैंने कभी किसी पर रहम नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, अपने तई देखता रहा, अपनी दुकानें, अपना मकान, अपना चीज, अपना कारोबार, अपना ये, और सोचा भी तो कितना, अपने बच्चे के बारे में, अपनी बहू के बारे में, अपने बेटे के बारे में, किसी इंसान के बारे में सोचा। सुभानअल्लाह, जिसके दिल रहम होते हैं वो अपनों को छोड़ देते हैं, गैरों की तरफ भागते हैं, पहले अपना ख्याल नहीं होता। जाए किसी अल्लाह वाली खानकाह में बैठ के देखे, कभी सीने से लगाकर नहीं बैठते अपने बच्चों को, अपने बेटों को, नहीं, इनको कोई ख्याल नहीं होता, मखलूक से मोहब्बत होती है, उनके मखलूक से प्यार करते हैं। हमने खानकाहों में ये देखा है कि लोगों को पता नहीं है तो उसका बेटा कौन है, क्यों बता रहा हूं, उसको नहीं पता बेटा, सब कहते हैं हम उसका बेटे हैं, तो नहीं मारते हैं, मैं उसका बेटा हूं, इतना मान करते हैं उसकी मोहब्बत पे कि सब उसको बाप ही कहते हैं अपना, असली बापों को भूल जाते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं आप, उनकी याद में कभी रोना नहीं आता बाप के, नहीं उसको चेहरा देख के अपना बाप क्या, वही बाप होता है उनके लिए, उनकी बातों में उसको सुकून मिलना शुरू हो जाता है, क्यों क्या उसका दिल बना होता है आदमी का, वो मखलूक तब क्या होता है, वो जिंदा कर रहा होता है दुनिया इंसान की, उस वो मखलूक को बना रहा होता है कलूब को। जब भी इंसान किसी अल्लाह वाले के पास जाए तो दिल को लेकर जाए, दिल को बनाए और दिल ही को पेश करे, वजूद को नहीं चाहिए, हजार वजूद बना लें, दाढ़ियां रख लें, इमामे मान लें, साफे पहन लें, ये पढ़ लें, इससे काम नहीं चलता, दिल की तरफ तवज्जा रखें कि दिल मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा, कितना रहम आ गया है मखलूक के लिए, अपने बच्चे पे रहम नहीं आता, वो सजा करता तो उसको थप्पड़ मार देता, दूसरे क्या हाल होगा, वल्लाह जिसके दिल में रहम आ जाए अपने बच्चे को डांट भी देता तो सारी रात तड़पता है कि यार मैंने ज्यादती की, ऐसे माफी कैसे मांगू, गैर के लिए कोई बात कर देता है तो यकीन करो बिस्तर पे करोड़ मारते रहता है कि यार कहीं ये बात मैंने बुरी तो नहीं कर दी इसके लिए, कि इसको तकलीफ तो नहीं होगी, हालांकि उसको एहसास भी नहीं होगा, और हाने बहाने से उससे माफी मांगने की कोशिश करेगा, ये हमारे दिल हैं दोस्तों, ये किधर की नमाजें वमाजें हमारी क्या कहें, हम क्या समझते हैं पांच बार जिक्र करना है, हाँ जिक्र मेयार नहीं है, तादाद मेयार नहीं है जिक्र की, ये मैं आपको बता दूं, असल चीज जो है क्या है कि दिल को देखें कि इस जिक्र से मेरा दिल बदला है या नहीं बदला, इसकी कैफियत चेंज हुई है नहीं हुई है, तादादों को ना देखें, जब तक दिल वो ना बन जाए जो अल्लाह चाहता है कल्ब सलीम, जिसमें मोहब्बत उमड़ने लगे मखलूक की तरफ, अपनी हर चीज से ज्यादा लोगों की तरफ उसकी तवज्जो हो जाए, रहम दिल इतना हो जाए कि माफी करने में उसको लुत्फ आए बजाय बदला लेने की, क्या नहीं बता लेंगे, जो ये नहीं होता कि जो तुझे मिले तो तू उससे मिल, नहीं, जो तुझे तोड़े उससे जोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, नहीं ये आप नहीं जानते, मैं खबरदार जैसे घर नहीं आने दूंगा, फला नहीं कर दूंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे इतनी गालियां दी है, ये तो सबको आता है करना, अल्लाह के नबी के रास्ते में जो औरत कूड़े फेंकती थी, कांटे फेंकती थी, मुझे बताएं क्या कुछ करती थी, एक दिन ना फेंकने पर अल्लाह के नबी हैरान होते हैं कि इसने मुझ पर जुल्म क्यों नहीं किया, कहीं कुछ बीमार तो नहीं होगी कहीं बेचारी वो, और उसको पूछने जा रहे हैं कि भाई तू बीमार तो नहीं है, जब इंसानियत में कोई ऐसा इंसान पैदा हो जाए, वो हुक्मरान बन जाए किसी, वो हुक्मरान बन जाए और उसके दिल के अंदर एक ये इबादत हो रहम की, अल्लाह की कसम अल्लाह की ताईद उतरना शुरू हो जाती है उसके साथ, दुनिया उसको पहचानने लगती है अल्लाह ने ऐसा इंसान पैदा कर दिया है। मैं आप बताऊंगा आपको इस महबूब के अंदर ऐसा इंसान पैदा कर दिया है मखलूक के अंदर, जरूरत थी इंसानियत की याद रखी कि जिसके दिल के अंदर एक ही चीज है और एक सिफत है, वो क्या सिफत है कि मखलूक का रहम डूब पड़ा है उसके दिल के अंदर, तो बर्दाश्त ही नहीं करता किसी की तकलीफ कोई भी हो। आप देख लीजिएगा कि पूरी दुनिया के अंदर छाप पड़ जाती है ऐसे इंसान, क्यों? अल्लाह का वली जब ही मकबूल होता है, सिद्धों से इन चीजों से इनका भी फायदा उसी वक्त होगा जब कल्बे सलीम होगा, वो दिल होगा जिसको अल्लाह दिल चाहता है, गिरिया करने वाला, रुजू करने वाला, रोने वाला, माफी मांगने वाला, रहम करने वाला, इसको कहते हैं दिल। इस मेहनत की जरूरत है मेरे भाइयों, क्योंकि ये जो इबादत मैंने आपको बताई है वो दिल से होती है, हाथों से नहीं होगी, माथों से नहीं होगी, रुकों से नहीं होगी, किससे होगी? दिल से होगी। आए हम अल्लाह से वादा करें सब लोग, अल्लाह ताला रास्ते पर तो तूने चला दिया लेकिन रास्ते का मकसद भी बता, इसकी मेहनत भी बता, इस पर इखलास में नसीब फर, तस्वीर उठाए कि नहीं तो तनाही में, इसीलिए नक्शबंदी तो हर चीज तनाही में करते हैं, मजमे में नहीं करते, अकेले बैठा करें तहज्जुद के बाद, मराकबा किया करें तो मराकबे में सोचा करें कि अल्लाह मेरे दिल को बदल दे, दिल की दुनिया को बदल दे, मेरे मोहब्बतें डाल दें मखलूक की मेरी, मेरे अंदर अल्लाह की नबी दुआ फरमा रहे हैं, कितनी बड़ी दुआ है, मासूरत है कि अल्लाह ताला मुझे गरीबों से मोहब्बत करना बता दे, आए अल्लाह के नबी ने दुआ बताई मुझे गरीबों की मोहब्बत दे दे। तुमने भाई ये है लाइन कि दिल को नरम कर लें हम, दिल में सख्ती उतर जाए, ऐसे ऐसे जुल्म होते हैं कि जिसका इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, बीवियों के साथ माँ यानी बीवियों के साथ इतना जुल्म होता है हमारे माशरे के अंदर, तसव्वुर नहीं आदमी कर सकता। तुम इस मुल्क में आए हो मेरे भाई, ये आम सुनता है ऐसे ऐसे बात है कि उसने अपने बाप को मारा, बाप को मारा है नहीं कत्ल कर दिया, ये जायदाद मुझे हिस्सा नहीं दे रहा, मेरी बहनों को हिस्सा दे रहा, मुझे नहीं दिया, कत्ल कर दिया, उठा गए थे अखबार है वो भी मुसलमान, हज वो भी चला जाएगा, काबे के चक्कर वो भी मार लेगा, काबे जमजम के डोल पी जाएगा, मदीने की खजूरें भी खा जाएगा, घर आएगा तो सबको मारेगा, खाने भी नहीं खा लेगा, नहीं नहीं ना जाओ मक्का, ना जाओ मदीना, ना पियो आबे जमजम, सुभान अल्लाह, दिल को अपने रहम के आंसू से भर लो, बस मक्का भी आ जाता है, मदीना भी आ जाता है, दिल को सही, दिल बड़ी ऊंची चीज है मेरे भाइयों, इस पे दिल पे मेहनत करें इंशाल्लाह, और उसकी मेहनत क्या है कि जब तक दिल हमारा ना बन जाए तो समझो जिक्र हमारा पूरा नहीं हो रहा, तादाद बढ़ाओ, खूब रगड़े लगो, खूब अल्लाह का जिक्र करो, कसर से करो, अपने शेख की बातों को सुनो, उस पे अमल करो, एक तरीके से कि अल्लाह दिल नहीं बदलना। अब ये नहीं कि आपको अल्लाह का मामला है, आप जानते हैं आपका दिल कितना है, इस इंतजाम ना नहीं, हज साहब कहेंगे नहीं तू ये गुनाह क्यों कर रहा है, ये फलाक हजन तो हमें कहा ही नहीं इसलिए ये सब सच है, बिल्कुल नहीं, रास्ता दिखाना काम होता है रहबर का, दिखा दिया आपको, देखें आपका दिल कितना सख्त है, मेरा कितना सख्त है, कितनी सी बदमाशी हम करते हैं दिल के साथ, कितने गलत पैगाम हम दिल के कबूल करते हैं, कितना हिरस है, कितना लालच है, कितना दिखावा है, कितनी रिया है, कितनी बनावट है, अल्लाह ने तो एक चुगली ना करने पे बख्शिश कर दी थी, उसकी जन्नतें दे दी हदीस में। अल्लाह पाक हम सबको ये इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين طه ياسين حبيب المؤمنين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته
كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا قديرا جزيلا جزيلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافي البليات اطفئ بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف مرادنا اللهم اعفنا في بدني اللهم اعفنا في سمعي اللهم اعفنا في بصري لا اله الا انت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم دمرهم هما كما ربياني صغيرا اللهم دمرهم هما كما ربياني صغيرا يا الله ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللهم دمرهم هما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب